ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरहि नष्टपरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। टुडे वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। आज हम श्रीमद् भागवतम का आठवें स्कंद का छठा अध्याय और उसका 38 श्लोक पर चर्चा करेंगे। 36 और 37 श्लोक में परपट नहीं है, तात्पर्य नहीं है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे और 38 पर चर्चा करेंगे। गिरिं चारोप्य गरुदे हस्तेनेकेन लीलया आरुह्य पारयो प्रययो अवधिम् सुरा असुरगणैर्वृतः। गिरिं चारोप्य गरुदे हस्तेनेकेन लीलया आरुह्य प्रायो अवधिम् सुर असुर गणैर्वृतः। गिरिं चारोप्य गरुदे हस्तेनेकेन लीलया आरुह्य प्रायो अवधिम् सुरासुर गणैर्वृतः। माताजी, शब्दार्थ और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। गिरिम पर्वत को चा भी आरोप्य रखकर गरुदे गरुड़ की पीठ पर हस्तेन हाथ से एकेना एक लीलया अपनी लीला के रूप में आसानी से आरुह चढ़कर प्रययो चले गए अवधिम क्षीर सागर सुर असुर गणे देवताओं तथा असुरों द्वारा वृतः घिरे हुए। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। दो श्लोक पहले भी पढ़ सकते हैं, 36वां श्लोक है, कल हमने 35 श्लोक पे चर्चा किया था। 36वां श्लोक का ट्रांसलेशन ऐसा है, देवता तथा असुर हताश तथा विशुद्ध थे और उनकी भुजाएं जांघें तथा कंधे टूट गए थे, अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। ये देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचल गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों में घाव भी जाते रहे। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर सर्वोपरि भगवान की सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर हैं। असुरगण सृष्टि के अवसर वाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं, किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि उन्होंने मंदर पर्वत असुर तथा देवताओं को मात्र एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और सबको क्षीर सागर ले आए। देवता तथा भक्त इस घटना को ये जानते हुए कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहे वे कितनी भी भारी क्यों ना हो उठा सकते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगी ये पौराणिक है। यद्यपि वे भी देवताओं के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए थे, किंतु क्या सर्वशक्ति भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है? चूंकि उन्होंने लाखों मंदिर पर्वत से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ से क्यों नहीं उठा सकते? ये पौराणिक कथा नहीं है, अपितु विश्वास करने वालों तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथाएं हैं। असुरगण यही व्याख्या करना श्रेष्ठ समझते हैं कि इस जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, किंतु भक्तगण अथवा देवगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं मानते। प्रत्युत ये वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों तथा दानवों के बीच में यही अंतर है। ओम अज्ञान्तिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुस्से नमः। ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರು ವೀಕ್ಷಾ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ವೈವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಸಭೀ ಭಕ್ತ ಕೃಪಾ ಯಾಚನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ ರಾಧಿಕಾ ಕನಿ ಬೂಜ ಕಾ ಆದೇಶ ಥಾ ಕಿ ಮೈಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಕರು ತೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವರಿಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಕೃಪಾ ಮಾಂಗತಾ ಹೂ ಕಿ ಹಮ ಆಜ ಭಾಗವತಂ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ ಪಾಯೆ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಇಸ್ಸೆ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಮೇರಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೋ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರಸಂಗ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಹಮ್ ಕುಛ ದಿನ ಸೆ ದೇಖ ರಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ನೆ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವತಾಂ ಕೋ ಜಬ್ ವೋ ಕಮಜೋರ್ ಹೋ ಗಯೆ ಔರ್ ಹಾರ್ ಗಯೆ ಔರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರಿ ಕಿ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೇ ಬಚಾಯಿಯೇ ಹಮಕೋ ಲೈಕ್ ಹಮಾರಾ ಸಬ್ ರಾಜ್ಯ ಚಲಾ ಗಯಾ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವತಾಂ ಕೋ ಕಿ ಆಪ್ ಜಾಯಿಯೇ ಔರ್ ಅಸುರೋ ಕೆ ಸಂಗ ಸಂಧಿ ಕರಿಯೇ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಬತಾಯಾ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಸಂಧಿ ಕೈಸೆ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಂಧಿ ಕರ್ಕೆ ಜೋ ಸಮುದ್ರ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮಂಥನ್ ಕರಿಯೇ ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಫಿರ್ ಅಮೃತ ನಿಕಲೇಗಾ ಉಸ್ಸೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಕೋ ಶಕ್ತಿ ಮಿಲೇಗಿ ಔರ್ ಫಿರ್ ಆಪ್ ವಿಜಯ ಹೋ ಪಾಯೆಂಗೇ तो देवताओं ने भगवान के आदेश माना और गए असुरों के साथ संधि करी बलि महाराज और उनके असुर गणों के साथ आता है पीछे प्रसंग में और वो लोग तैयार भी हो गए और उसका पहला स्टेप है कि वो लोग जो मथने के लिए मथनी लगता है तो मथनी भगवान ने बताया क्या है वो मंदर जो पर्वत है मंदरा माउंटेन है उससे मथेंगे हम समुद्र को और उससे फिर अमृत निकलेगा तो दोनों असुर और देवता गए उसको लेने के लिए और बहुत सब माने आप समझिए कि पूरे विश्व के जो शक्ति है बड़े बड़े रूलर किंग्स राजाएं कोई असुर है या सुर है देवता है या असुर है सब मिलके माउंटेन जो मंदिर पर्वत है उसको उठाने के लिए गए तो उठा भी पाए उसको जड़ से निकाला और फिर उठा के लाए लेकिन इतना भारी था वो यहाँ से तीन श्लोक पहले आता है कि इतना भारी था क्योंकि वो सोने का बना हुआ था तो गोपाल जी लिखते हैं तात्पर्य में सोना पत्थर से भी भारी होता है तो इतना भारी था कि वो रास्ते में लाते लाते थक गए उनके हाथों में दर्द होने लगा परेशान हो गए थक गए और आखिरकार उनको छोड़ना पड़ गया सब उठाए हुए हैं सब करोड़ों करोड़ों असुर देवता सब उठाए हुए हैं और इतना उनको थक गए उसको उठा के इतना भारी था कि हार मांग के उसको छोड़ दिया जब उसको छोड़ दिया तो कितने सारे असुर और देवता उसके दब के नीचे दबकर कुचल गए मर गए चोटें आ गई सबको ऐसा तब भगवान आए और इन दो श्लोकों में आता है 36 और 37 में भगवान आए भगवान ने अपनी दृष्टि सिर्फ दृष्टि करी और उससे सब लोग को जीवन वापस मिल गया उनकी चोटें जो थी उनकी जो भी उनको फिर से बल वापस आ गया और फिर भगवान ने स्वयं पर्वत को उठाया मंदर माउंटेन को उठाया अपने एक हाथ से और गरुड़ के ऊपर बैठ के और सब असुर और देवताओं को बिठा लिया कि अभी आप चलो तो सबको लेके भगवान अभी समुद्र के बीचों बीच में आ गए हैं और वहां पे मंदर पर्वत लिख देते हैं आगे आएगा वहां पे रख देते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं बात पहले ही तात्पर्य कहते ही पापा जी कहते हैं यहाँ पर सर्वपरि भगवान की सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ पे भगवान का जो ओमनीपोटेंट कि भगवान कृष्ण भगवान सर्वशक्तिशाली हैं ये उदाहरण ये देता है नहीं जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं भगवान पे, ये असुरों की प्रवृत्ति होती है कि पापा जी आगे लिखते हैं, असुरगण देख रहे हैं कि भगवान पर्वत उठा के लेके गए हैं और वो लोग भी गए हैं, पापा जी लिखते तात्पर्य में, लेकिन उनको विश्वास नहीं होगा, वो कहते भगवान नहीं है, सब कुछ क्या है अपने आप हो रहा है, बाय चांस एवरीथिंग हैज कम बाय चांस, ऐसा कहते हैं पापा जी, हिंदी में लिखते हैं इसका अकस्मत, अकस्मत कहते हैं हिंदी में, अकस्मत हो गया है, अपने आप हो गया है, असुरगण ऐसा कहते हैं, वो भगवान का हाथ नहीं देखते। लेकिन पापा जी पहले ही यही बोल रहे हैं कि भगवान की जो सर्वशक्तिशाली भगवान है उनका प्रूफ है ये जो पतंग है। हम देखें कि कितने सारे ये असुर हैं, जो असुर और सब और राजाएं हैं, सबसे ज्यादा बल जो है पूरी दुनिया का, वो साथ में मिलके वही पत्थर जो पर्वत है उसको उठा नहीं पा रहे हैं, साथ में सब लोग मिले हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुश्किल हो रहा है उठाने के लिए। तो जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला होती है, उसमें भी ब्रह्मा जी जब लीला हो जाती है तो ब्रह्मा जी भगवान का जब इतना ऑपुलेंस देख लेते हैं, भगवान उनको दिशाते हैं, श्री राधा राज बिहारी जी की जय, शशि गौनिताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो ब्रह्म विमोहन लीला होने के बाद जब ब्रह्मा जी को समझ आता है कि उनकी स्थिति क्या है, इतने सारे उन्होंने भगवान का ऑपुलेंस देखा और बहुत सारे भगवान ब्रह्मा जी को और जो अलग अलग यूनिवर्स के ब्रह्मा है उनको बुलाते हैं, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, आपके ऑपुलेंस के सामने मैं तो एक फायर फ्लाई, मैं एक जुगनू के समान हूँ, आपकी इतनी रोशनी के समान मैं एक जुगनू के समान हूँ, मेरा जो अस्तित्व है। तो ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं तो हमारा क्या सोच सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारा क्या क्षमता होगी हमारी, जब इतने शक्तिशाली राजाएं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान का शक्ति देख के ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग कितने तुच्छ हैं और हम कहते हैं भगवान नहीं है, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने प्रयासों में आगे निकल सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ये बीजिंग में चाइना में ओलंपिक्स हुआ, तो वहां पे ऐसा मौसम आ गया, ऐसा वेदर हो गया कि बारिश होने का संभावना था, तो वहां पे उनका एक डिपार्टमेंट है, वेदर मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनका ऑफिस है। तो आप देखिए हम इतना ज्यादा अपने बल पे अपना इतना हमें फेथ है अपने ऊपर, या इतनी अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना हमें श्रद्धा है कि हम जो नेचर है उसको भी बदल सकते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, उनका स्टेटमेंट आया, टेक्नोलॉजी कॉन्कर्स नेचर, दैट वाज अ स्टेटमेंट केम इन न्यूज़पेपर, ऐसा स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बादल को या वेदर को मॉडिफाई कर दिया और बारिश होने से रोक लिया। तो उनको मालूम नहीं है कि बादल भी जड़ है बारिश के लिए, उसको कौन बनाता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ प्रयास किया, कुछ ऐसा केमिकल छोड़ते हैं कि बादल इमीडिएटली बारिश कर दें, बाद में ना करें, ऐसा परस्पिरेशन हो जाए और सम केमिकल्स दे रिलीज सो दैट इमीडिएटली क्लाउड लाइक रेन लाइक दिस समथिंग दैट राइट। सो हम देख सकते हैं कि कितना भौतिकवादी हम, इतना ज्यादा भगवान को बिल्कुल महत्व नहीं देते और अपनी क्षमताओं पर ही ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार हम एक छोटी सी स्टोरी आती है, जैसे कि एक व्यक्ति गया बार्बर की शॉप पे, नाई की दुकान पे गया, तो वहां पे अपना शेविंग करा रहा था, तो वहां पे बार्बर और उसके साथी चर्चा कर रहे थे। तो क्या चर्चा कर रहे थे कि अगर भगवान सर्वशक्तिशाली हैं तो भगवान सर्व कृपा नहीं कर सकते हैं, भगवान पूर्ण कृपा माने ही इज नॉट ऑल मर्सीफुल, पूरा कृपा पूर्ण नहीं है, अगर शक्तिशाली हैं और पूर्ण कृपा भी है तो फिर इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, अगर भगवान सबको शक्तिशाली है, सब उनके अंदर शक्ति है और भगवान बहुत कृपा भी है, पूर्ण कृपा भी करते हैं, तो फिर दुनिया में सफरिंग क्यों है, दुख क्यों है, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति सुन रहा था इनकी चर्चा, तो अपना काम करके शेव करके हेयर कटिंग करा के बाहर गया, और बाहर जाके उसने देखा कुछ व्यक्तियों को देखा, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं। तो वो व्यक्ति वापस लौट के आया, उसको भगवान पे विश्वास था, श्रद्धा थी भगवान पे, आस्तिक था। तो वो लौट के आया और नाई से कहता है, बार्बर से कहता है, अरे इस दुनिया में कोई नाई नहीं है, है? कोई बार्बर नहीं है, कोई बार्बर एग्जिस्ट नहीं करता है, नाई होते हैं जो वो एग्जिस्ट नहीं करते। बोले अरे आज तुम अभी आए, मैंने तुम्हारी शेव करी, तुम्हारे बाल काटे, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि नाई एग्जिस्ट नहीं करते या फिर नहीं होते। बोले कि देखो कितने सारे लोग बाहर हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े बाल हैं, इसका मतलब यह है कि कोई नाई नहीं है, नहीं तो उनकी दाढ़ियां कैसे हैं, क्यों बड़े बड़े बाल हैं। तो नाई कहता है, बार बार कहता है, अरे वो मेरे पास नहीं आते, वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी शेव भी कर दूंगा, मैं उनके बाल काट दूंगा, वो मेरे पास नहीं आते, वो उनकी कमी है। उसी प्रकार वो व्यक्ति कहता है, लोग भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को शरणागत नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, इसलिए दुख है। ये नहीं है कि दुख है तो भगवान नहीं है, या भगवान सर्व कृपामयी नहीं है, नहीं, भगवान है, भगवान सबको कृपा देने के लिए तैयार है, बट हम लोग भगवान को शरणागत नहीं करते, भगवान को नहीं मानते। जैसे हम देख सकते हैं कितना ज्यादा हम भौतिकवाद या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, साइंस पे कितना डिपेंडेंट है, लेकिन लेकिन भगवान की अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। आजकल तो बिल्कुल कॉमन हो गया है, फैशन हो गया है अपने को नास्तिक कहना, आई एम अथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, दिस इज लाइक गुड थिंग, लाइक प्रेस्टीज हो गया है। ऐसा कोई बोलता है तो बड़ा लोग समझते हैं कोई इनका ये भी इनका लाइक फैशन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो असुर हैं, असुर गण होते हैं जिनकी असुर प्रवृत्ति होती है, वो यही कहते हैं सब कुछ कैसे आया है, बाय चांस, इट हैज कम बाय चांस। हम जैसे साइंस में पढ़ते हैं, आज हमने भी पढ़ा था अपने साइंस में 11वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में, एक थ्योरी होती है साइंस में जिसमें कहते हैं कि दिस क्रिएशन हैपेंस बाय बिग बैंग थ्योरी, है एक छोटी सी बिंदु से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ बैंग, और उससे क्या हुआ, बहुत सुंदर क्रिएशन, ये सब सृष्टि हो गई, बहुत सुंदर क्रिएशन हो गया। तो और ऐसा साइंस बताता है, थ्योरी है कि इस जो बिंदु को हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, कभी उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो हमको जितना समझ है साइंस बताते हैं, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है कि आप कुछ हाइपोथेसिस लिखिए और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करिए और फिर रिजल्ट आए, इसे कहते हैं साइंस, विज्ञान। कोई चीज आपने थ्योरी लिखी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट आए, हर बार आप ये करोगे हर बार रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, देन इट्स बिकम विज्ञान, देन इट बिकम साइंस, नहीं तो वो थ्योरी रह जाएगी। तो अगर वो ऐसा कहते हैं साइंस की साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा कि हम उसको देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, या फिर से अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो फिर कैसा ये साइंस है। तो विश्व के बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में और बहुत देशों में ये थ्योरी बैन है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी भारत में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है बच्चों को। और इससे क्या प्रूव होता है कि भगवान का वो अस्तित्व नहीं है, सब ये क्रिएशन हुआ है, कैसे हुआ है, बाय चांस, बाय बिग बैंग थ्योरी, कोई ब्लास्ट हुआ। एक बार बता रहे थे कि छोटा सा लॉजिक है, अगर ब्लास्ट से ही क्रिएशन होता है तो हम भी एक कोई ब्लास्ट कंपनी खोल लेते हैं, ब्लास्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो हम ब्लास्ट करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट कुछ ऐसे ब्लास्ट करेंगे और उससे देखेंगे कुछ क्रिएशन हुआ, ऐसा हो सकता है क्या, आपने कोई ब्लास्ट देखा है, आपने कभी ब्लास्ट हुआ और कुछ अच्छा बिल्डिंग खड़ा हो गया, होता है ऐसा क्या, नहीं होता। ब्लास्ट होता है तो पहली चीज देखते हैं कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, कितना लक्ष्मी का नुकसान हुआ, क्या क्या पे नुकसान हुआ, यही पता चलता है, कभी सुना नहीं हमने कि ब्लास्ट से कोई क्रिएशन हो रहा है। तो बिल्कुल वो नहीं है, इसका लॉजिक नहीं है ऐसी थ्योरी पे, और हम लोग इस पे विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं। या दूसरी तरफ भगवान कहते हैं भगवद्गीता पे, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, मैं इसका सृष्टिकर्ता हूं, ये नहीं है कि अपने आप सब कुछ चल रहा है। या तो ये आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दानवों या देवी देवताओं और असुरों में क्या अंतर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या अंतर है, इनके श्रद्धा में अंतर है। जो असुर हैं उनको श्रद्धा नहीं होती भगवान के ऊपर, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो विश्वास नहीं करते भगवान पे। दूसरी तरफ जो भक्त हैं, जो देवता हैं, उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास रहता है, भगवान पे विश्वास करते हैं, फेथ होता है भगवान के ऊपर। तो हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं जितनी डिग्री में, जितनी मात्रा में हमारे अंदर श्रद्धा है, उतनी मात्रा में ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सकता है। हमारा जो भक्ति के स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं भक्ति के, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनित्य निवृत्ति, तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, जो भक्त है उसका श्रद्धा बढ़ती जा रही है भगवान कृष्ण के ऊपर, श्रद्धा बढ़ती जा रही है, हर स्टेज में उसको श्रद्धा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में और उसकी श्रद्धा बढ़ रही है। तो जितनी क्षमता में हमारी, जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा भरेगी, उतनी मात्रा में हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। तो ये जो श्रद्धा है यही टेस्ट है कि हमारा भक्ति का, हम भगवान पर कितने निर्भर हैं। अभी श्रद्धा क्या है कि भगवान हमको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमें सुरक्षा देंगे, भगवान हमारा पालन करेंगे, भगवान कृष्ण हमारा पालन करेंगे, कृष्ण एक ही शरणम, ये श्रद्धा है। तो जो एक एडवांस डिवोटी होता है उसको पूर्ण श्रद्धा होता है भगवान के ऊपर, कोई भी कभी भी विचलित नहीं होता कैसी परिस्थिति आ जाए। कैसे टेस्ट हो सकता है, जब कोई परिस्थिति खराब होती है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन होती है हमारे जीवन में, तभी इसका हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी हमारी श्रद्धा है। जैसे कि हम देख सकते हैं शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, जब उत्तरा को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा इमीडिएटली भगवान कृष्ण का शरण लेने के लिए दौड़ी, पाही पाही महायोगिन देव देव, तो हमेशा भगवान को इमीडिएटली भगवान कृष्ण के पास सहारा लेने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भागे। तो ये भक्त का गुण होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है तो भगवान का ही शरण लेते हैं, भगवान पे पूर्ण विश्वास है कि जो भी ये परिस्थिति आई है मेरे लिए अनुकूल है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। देख सकते हैं हम और एक उदाहरण, अम्बरीश महाराज है। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने जब श्राप दिया तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, पूरा अपना जो भगवान पे स्मरण करने लगे, भगवान पे ध्यान रखा, और कोई भी उनके अंदर भी इतनी शक्ति थी, इतने शुद्ध भक्त भगवान की, वो भी रिटेलिएट कर सकते थे या अपने को डिफेंड कर सकते थे, अपने को बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं। अब भगवान चाहते हैं परिस्थिति आए मेरे जीवन में, ठीक है कुछ अच्छा ही होगा इसके लिए, भगवान को अच्छा ही चाहते हैं। तो एक्चुअली कोई परिस्थिति खराब नहीं होती किसी भक्त के जीवन में, हमारी चेतना पर डिपेंड करता है, हमारे मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है, हम उस परिस्थिति को कैसे लें, वही हमारे जीवन में वही प्रॉब्लम, वही परिस्थिति जो डिफिकल्टी है, वही हमारे जीवन में हमको परेशान कर सकती है, हमको भक्ति में रोक सकती है, ऑब्स्टेकल बन सकती है, और वही परिस्थिति हमारा भक्ति में प्रगति करा सकती है अगर हम उसको सही मनोवृत्ति से डील करें। देख सकते हैं प्रहलाद महाराज कि प्रहलाद महाराज भी कैसे उनके पिता हिरण्यकश्यपु कितना उनको प्रयास करते थे मारने का, लेकिन कभी भी उन्होंने हमेशा भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, पूरा उनको विश्वास था, उनको पहाड़ से फेंका गया तो गिर रहे हैं नीचे, हमारी ऐसी परिस्थिति हो हम ऊपर से गिर रहे हैं नीचे तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे क्या होने वाला है मेरा, ये हमारा विचार रहेगा, लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्ण विश्वास है कि भगवान अगर मेरे को बचाना चाहेंगे, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, अगर भगवान चाहते हैं कि मैं मरूं तो ओके, मेरा यही मेरे लिए अनुकूल है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा या भगवान सुरक्षा देना चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो ये भक्त का पूर्ण निष्ठा होती है भगवान के ऊपर, पूरी श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर, ऐसा भक्त होता है। भीष्म पितामह भी, भीष्म देव भी पांडवों से यही कहते हैं कि आप लोग अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीव तुम नारहत क्लिष्टम विप्र धर्म अचुताशरय, कि हे पांडवास, जब विष्णुदेव अपनी डेड बेथ पे लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण ने पांडवास को लेके आए, युधिष्ठिर महाराज को लेके आए पैसिफाई करने के लिए। तो भगवान भीष्मदेव बहुत खुश हुए और क्या कह रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कि आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा, आप तो धर्म के पुत्र हैं है? और धर्मराज हैं, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा अपने जीवन में, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना आपको अन्याय हुआ आपके साथ, लेकिन फिर भी आप जीवित रहे और आज राजा बने हुए हैं, राज्य मिला है आपको। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने धर्म विप्र धर्म अच्युत आश्रय इसको कभी त्याग नहीं किया, हमेशा आपने इसका शेल्टर लिया, विप्र भगवान कृष्ण के भक्तों का, भगवान कृष्ण का और धर्मों के प्रिंसिपल्स का, जो धर्म के प्रिंसिपल हैं, रिलीजन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको कभी आपने नहीं छोड़ा। यू हैव टेकन ऑलवेज शेल्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। कभी आपने कैसी परिस्थिति आई लेकिन आपने कभी भी कुछ गलत कार्य नहीं किया, धर्मों के प्रिंसिपल को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए आप आज इसके इतने कष्टों के बाद, इतने अन्याय होने के बाद भी आप जीवित हैं। तो तो ये फेथ, ये श्रद्धा होना बहुत जरूरी है एक भक्त के जीवन में। भक्त का मतलब है श्रद्धा भगवान कृष्ण के ऊपर, तभी भक्त है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो अभक्त है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं और मंदिर में रहते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उतार नहीं पाए, एप्लीकेशन नहीं कर पाए। जैसे कि हम प्रभुपाद जी एक कथा बनाते हैं, प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं, एक ब्राह्मण की और एक मोची की, प्रभुपाद जी बताते हैं कथा। तो कैसे एक ब्राह्मण होता है, एक बार नारद मुनि जा रहे होते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण से, मैं जा रहा हूं वैकुंठ, आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए मेरे से, मैं भगवान विष्णु से पूछ के आऊंगा। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है, आप पूछिए भगवान से कि मैं कब भगवत धाम वापस लौट के आऊंगा। बोले ठीक है। फिर वो मोची के पास जाते हैं, रास्ते मोची भी आता है, उससे भी पूछते हैं, आप पूछिए आपको कोई प्रश्न है क्या, मैं भगवान से पूछ के आता हूं। वो भी यही प्रश्न पूछता है, भगवान से पूछिएगा कब मैं ये भौतिक जगह छोड़ के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के और भगवत धाम वापस आऊंगा। तो बोले ठीक है। तो भगवान, तो नारद मुनि जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में और उनसे ही प्रश्न पूछते हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा पूछा है। और तो भगवान विष्णु कहते हैं उसको अभी बहुत जन्म लगेंगे, बहुत सारे जन्म लगेंगे उसको वापस आने के लिए। फिर नारद मुनि पूछते हैं मोची के बारे में, तो भगवान कहते हैं वो इसी जन्म के बाद, अभी शरीर त्यागने के बाद इस जन्म में ही वापस आ जाएगा भगवत धाम। तो फिर नारद मुनि जी कहते हैं ठीक है जाता हूं मैं। तो भगवान कहते हैं अगर वो आपसे पूछे कि मैं क्या कर रहा था वैकुंठ में, तो आप बोलिएगा मैं एक सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहा था। बोले ठीक है। तो फिर नारद मुनि वापस जाते हैं और ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो ब्राह्मण पूछते हैं अच्छा नारद मुनि आप आ गए, आपने पूछा मेरा प्रश्न। नारद मुनि बोले हाँ पूछा मैंने। भगवान क्या बोले? भगवान बोले आपको तो बहुत सारे जन्म लगेंगे अभी भगवत धाम वापस आने के लिए। ब्राह्मण कहता अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप गए नहीं होंगे, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, इतने शास्त्र पढ़े मैंने, इतना भगवत गीता पढ़ा है, इतना अध्ययन करा है, इतने प्रवचन करे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बहुत जन्म लगेंगे मेरे को भगवत धाम आने में। मैं पक्का कह सकता हूं आप गए नहीं। अच्छा आप गए थे तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे फिर। नारद मुनि बोले भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल लेते। बोले ये पक्का हो गया अभी आप गए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान थोड़ी ना सुई की नोक से कोई हाथी निकाल सकता है क्या, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप गए नहीं वैकुंठ। तो ठीक है। फिर नारद मुनि गए मोची के पास। तो मोची से कहते हैं मैंने प्रश्न पूछा आपके बारे में, भगवान ने कहा है कि इसी जन्म के बाद आप वैकुंठ आ जाएंगे। तो मोची तो बहुत खुश हो गया और डांस करने लगा कि भगवान कितने कृपालु हैं, मेरे को अगले जन्म, मेरे इसी जन्म इस शरीर त्यागने के बाद इसी तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। तो बहुत खुश हो गया, बहुत डांस लगा। तो नारद मुनि बोले आपको श्रद्धा है कि भगवान आपको भगवान पे विश्वास है लाइक। फिर नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि बताते हैं आपको मालूम है भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो नारद मुनि कहते हैं उससे मोची से कि भगवान हाथी सुई की नोक में से हाथी को निकाल लेते। तब मोची और खुश हो गया कि मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, मेरे भगवान कितने शक्तिशाली हैं, है? कुछ भी कर सकते हैं। तब नारायण मुनि पूछते हैं मोची से, अरे आपको श्रद्धा है भगवान के ऊपर, इतना फेथ है कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल सकते हैं? बोले हाँ, आप देखो ये बरगद का पेड़ है, है? छोटा सा बीज होता है, तो भगवान ने छोटे से बीज में सब सॉफ्टवेयर डाल के रखा है भगवान ने, है? इतना डेटा एंट्री किया, इतना सॉफ्टवेयर रखा है उसके अंदर कि छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ निकल के आ जाता है, तो क्या छोटी सी सुई की नोक में से हाथी नहीं निकाल सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मोची है, जिसने कुछ शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उसको श्रद्धा है भगवान के ऊपर, पूरा फेथ है, है? कि भगवान कृपामयी है, भगवान सब शक्तिशाली है, है? तो वो इस श्रद्धा के कारण क्वालिफाई है भगवत धाम जाने के लिए। दूसरी तरफ हम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लें, बहुत अध्ययन कर लें, हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये अप्लाई भी करना चाहिए जीवन में। जब परिस्थिति अनुचित हो हमारे जीवन में, तो हमें फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी होना चाहिए उसका। हमें भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर अनुचित परिस्थिति में वो बाहर भी आना चाहिए कि हम भगवान का शेल्टर ले रहे हैं। उल्टा नहीं होना चाहिए, जब परिस्थिति खराब है, कुछ डिफिकल्टी आ गई जीवन में, तो हमने जप करना छोड़ दिया, हमने शास्त्र प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए। नहीं, हम देख सकते हैं शीला प्रभुपाद जी के उदाहरण से, प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भौतिक अपने को सेटल करने के लिए, बहुत ही प्रयास किया। कैसे अपना प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में बोस लेबोरेटरी में काम किया, एंड प्रभुपाद जी वर वेरी एक्सपर्ट। फिर प्रभुपाद जी इलाहाबाद गए, वहां पे बिजनेस किया, फिर प्रभुपाद जी ने फैक्ट्री खोला लखनऊ में। ऐसा कहते थे प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट थे कि कुछ सालों में प्रभुपाद जी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, सबसे बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी होता प्रभुपाद जी का, इतना प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे। सो एक्सपर्ट प्रभुपाद वॉज, बट समहाउ ही डिडंट गेट द सक्सेस। जहां जहां वो प्रयास करते थे, उनको हार मिल जाती थी, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। बट प्रभुपाद टुक इज एड कृष्णा स्मृति, भगवान प्रभुपाद जी ने क्या लिया, यस्या हम अनुग्रहामी हरिस्य। प्रभुपाद जी टुक, भगवान चाहते हैं कि मैं, भगवान की कृपा है कि भगवान सब कुछ मेरा जो भौतिक परिस्थिति में मेरे को नुकसान दे रहे हैं, सब मेरा भौतिक धन है या जो भी है, वह मेरे को फेलर दे रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे को। तो फिर हम देखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया प्रचार करने का, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का। भारत में बहुत प्रयास किया प्रभुपाद जी ने, झांसी में, दिल्ली में, कितना स्ट्रगल किया, बैक टू गॉड एंड मैगजीन छापा, सन स्ट्रोक आ गया, उनका झांसी में उनका जो टीचिंग उनका वेन्यू था वो भी छीन लिया गया, जहां पे उनको प्रचार करना था जो उनको मिला तो वो भी उनसे वापस ले लिया गया, कुछ भी कहीं के नहीं रहे प्रभुपाद जी। बॉम्बे आए, बॉम्बे में प्रयास किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, उनके एम्बिशन कम नहीं हुए और बढ़ गए भगवान का प्रचार करने के लिए। हम देखते हैं, हम थोड़ा सेवा करते हैं तो हम कभी हार मिल जाती है तो हम छोड़ के चले आते हैं कि नहीं हो सकता, मुश्किल है। हम गीता वेतन कर जाते हैं तो कहीं हम देखते हैं गीता वेतन नहीं हुआ तो हम छोड़ते हैं, जगह अच्छी नहीं है, चेंज कर लेते हैं जगह, या फिर बैठ जाते हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले एक जगह है छह गांव, तो वहां पे प्रयास स्टार्ट किया, तो और भी जगह स्टार्ट किया, एक अफसारी जगह है कुछ पहले निमानी ताई पूजी ने स्टार्ट किया वहां पे टीचिंग, और छह गांव में भी स्टार्ट किया। तो अफसारी में तो हमारा प्रचार चल गया और अच्छा प्रचार हो रहा है, लेकिन छह गांव में प्रयास नहीं हुआ, तो हमें मैं पर्सनली उदास हो गया, अरे हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं या फिर अच्छी जगह नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन भक्तों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सालों पहले जब हम जलगांव में प्रचार करते थे तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि प्रचार हो नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, और जगह देखते थे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है, और जलगांव में बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ऐसा स्थिति आ गई थी, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे मुकुंद माधव प्रभु जी से, और कह रहे थे प्रभु जी कहीं और बड़े कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, जलगांव तो छोटी सी जगह है, वहां तो प्रचार उतना हो नहीं रहा है। ऐसा हम स्थिति आ गई थी कि हम सोच रहे थे कि छोड़ दें या फिर कम कर दें प्रचार और जगह मेहनत करें, लेकिन हमेशा प्रभु जी मुकुंद बापू ने कभी कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जो भी होता है, हु नोज। एंड परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोले, हु नोज, जलगांव कैन बी अ गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया बन जाएगा। और आज हम देख सकते हैं कि जलगांव में इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, और अच्छा प्रचार हो रहा है, और सबसे ज्यादा बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं और बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। तो ये भक्त परिस्थिति अनुचित हो तब हार नहीं मानता, भगवान पे निर्भर रहता है, चाहे रिजल्ट आए ना आए। एंड प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं प्रभुपाद जी के एम्बिशन कम नहीं हुए। हम देखते हैं अपने जो बच्चे आजकल जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, उनके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, जब वो इंजीनियरिंग करने आते हैं ना, मैं बड़ा ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, बड़ा कंपनी में जॉब करूंगा ये. लेकिन जैसे आजकल परिस्थिति बहुत खराब है, जॉब नहीं मिलते ज्यादा, तो जैसे वो क्लोज आते हैं जॉब्स के लिए ट्राई करना शुरू करते हैं, उनके लक्ष्य छोटे हो जाते हैं. नहीं, बड़ी कंपनी तो एटलीस्ट कुछ कंपनी तो मिले, अरे इंजीनियरिंग कंपनी तो मिले, एटलीस्ट मेरे स्ट्रीम है जो मेरा जहां पे मैंने पढ़ाई करी वो तो मिले. तो थोड़ा थोड़ा अपना एम्बिशन कम कर देते हैं. लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रभुपाद जी के एम्बिशन कम नहीं हुए, और बढ़ गए. इंडिया में प्रचार नहीं हुआ, अभी न्यूयॉर्क में प्रचार करूंगा. अभी मेरे गुरु ने कहा है पाश्चात्य देश में जाना है, तो वहां जाके प्रचार करूंगा. तो पापा जी हार नहीं माने, प्रयास करते रहे. अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी भी उन्होंने श्रद्धा कम नहीं करी, बहुत श्रद्धा दी पापा जी को. पापा जी को इंस्ट्रक्शन में पापा जी कहते हैं, जब बॉस्टन बॉस्टन पहुंचे तो वहां पे पापा जी बहुत सुंदर पोएम लिखते हैं मार्किन भागवत धर्मा, उसमें कहते हैं बड़ो कृपा कर ले कृष्णा अधम मेरे पति. भगवान कृष्ण आपने बहुत कृपा करी है, इस अधम को आप लेके आए. जरूर कोई बिजनेस होगा आपका, मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं आप इस पाश्चात्य देश में जहाँ इतना रजोगुण तमोगुण है, तो कोई ना कोई तो आपका बिजनेस होगा है, कुछ ना कुछ तो कार्य होगा कि आपने मेरे को यहाँ पे लाए हैं. तो हमेशा प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण का हाथ तो देखते थे, तो बहुत श्रद्धा थी. ये भक्त का गुण होता है कि भगवान पे श्रद्धा होना. दूसरी तरफ हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि एक बार कुछ युद्ध हुआ, तो अमेरिका के बीच में हुआ या फिर युद्ध हुआ, तो उसमें जर्मनी में कुछ वाइफ थे जो युद्ध के जो सैनिक थे, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, हे भगवान हमारे पति हमारे पुत्र जा रहे हैं और युद्ध करने, कृपा करिए ये लोग वापस आ जाएं, जीवित वापस आ जाएं. और जब पापा जी लिखते हैं जब वो सब मर गए कोई वापस नहीं आया, तो वो जर्मन जो स्त्रियां थी उन्होंने सब फेथ छोड़ दिया, श्रद्धा छोड़ दी भगवान के ऊपर, भगवान नहीं होते, भगवान के पालू नहीं है, ऐसा श्रद्धा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम देख सकते हैं. तो प्रश्न उठता है कि ये श्रद्धा कैसे डेवलप करें. आप कह रहे हैं कि श्रद्धा होना बहुत महत्वपूर्ण है, हमको श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए. तो व्यक्तिगत रूप से हम कैसे श्रद्धा बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हमारी श्रद्धा हमारे आएगी. तो जब भक्त हम लोग अपने जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियों में भगवान का हाथ देखना शुरू करेंगे, कोई भी परिस्थिति हो रही हमारे जीवन में अच्छी बुरी, उसमें देखेंगे कि भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, ये हम देखना शुरू करेंगे, भगवान का हाथ देखना शुरू करेंगे, भगवान का हाथ देखेंगे कि इसमें भगवान हस्तक्षेप किए हैं इसके ऊपर, तो कुछ अच्छा ही होगा, अनुकूल ही है कुछ. जब ऐसा हम देखना शुरू करेंगे तब हमारा ये श्रद्धा विकसित होती है, छोटी छोटी श्रद्धा हमारी विकसित होती है. तो ये बहुत अनुकूल है. पापा जी लिखते हैं भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में पापा जी लिखते हैं, जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का जो तेज है वो मेरे से आ रहा है. ऑल दिस स्प्लेंडर इज कमिंग फ्रॉम मी, जो तेज है मेरे से आ रहा है. तो पापा जी तात्पर्य में लिखता है ये कंसेप्शन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा दृष्टिकोण, हर चीज में भगवान को देखना है? हर चीज में भगवान का हाथ देखना बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में. ये भक्त जो कंडीशन लाइफ में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दृष्टिकोण, ये कंसेप्शन जीवन का, क्या हमेशा भगवान को देखना, हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना. और ये कैसे बढ़ता है, हम कैसे स्टडी होता है हमारे जीवन में, कैसे कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, जब हम श्रद्धावान भक्तों के संग में रहते हैं, श्रद्धावान भक्तों के संग में रहते हैं तो ये कंसिस्टेंटली हम देख सकते हैं और ये हमारा श्रद्धा इंक्रीज कर सकता है. जैसे कि हमारे एक भक्त हैं, इंजीनियरिंग किया उन्होंने, जॉब कर रहे थे, तो उनकी इच्छा है कि वो भगवान का शरणागत होके और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के शरणागत होके भगवान की सेवा करें मंदिर में रह के. तो हमारा आईवीएफ में थोड़ा नियम है अभी कि जो भी भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको लाइक कुछ लक्ष्मी जोड़ के घर को, घर की परिस्थिति घर में दे के, और घर की परिस्थिति क्या है फाइनेंशियली पूरा सही करके, बहन की शादी करा के, लोन वोन है चुका के, सब कुछ पूरा करके फिर आप मंदिर ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा. तो उनको भी कुछ था कि आप एक 5-6 लाख 10 लाख रुपए जो भी आपको जमा करना है फिर आप ज्वाइन करना है. لیکن ان کی انجینئرنگ ہے, ان کا جاب ہے تو اتنا چھوٹا تھا جاب, یا جو ان کی لکشمی تھی تو بہت کم تھی کہ 10 سال لگ جائیں گے ان کو جاب کرنے کے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں گے کیسے, یہ اتنے اچھے بھکت ہیں, اتنی شردھا ہے بھگوان کے اوپر, بھکتی کرنا چاہتے ہیں, شناگت کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے یہ جو ان کا ریسپانسبلٹی کیسے پوری ویسے کریں گے. گھر میں لون ہے اس کو چکانا ہے, اور ان کا کچھ سیلری ہے اس میں سے گھر کا مینٹیننس کے لیے بھی دیتے ہیں, تو آخری میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے, اتنا کچھ بچتا ہی نہیں کہ جوڑے وہ, تو کیا کرے, سمجھ ہی نہیں آتا تھا. ایک سال دو سال ہو گئے. تو ریسنٹلی کیا ہوا کہ ان کی کمپنی نے ان کو بہت بار, پہلے بھی ان کی کمپنی نے ان کو آفر دیا کہ آپ پاشچاتیہ دیش میں جائیے, دوسرے کنٹری میں جائیے, وہاں پہ کچھ پروجیکٹ ہے وہ کریے جا کے. تو انہوں نے منع کر دیا, نہیں نہیں بھکتوں کا سنگ نہیں ہوگا وہاں پہ, میں نہیں جاؤں گا. دو تین بار آفر دیا تو وہ نہیں گئے, اور امپلائی جو تھے وہ چلے گئے ان کے کلیگس. لیکن ریسنٹلی کچھ 6 مہینے پہلے پھر سے کمپنی نے ان کو آفر دیا کہ یہ آفر ہے, یہ آپ جانا چاہتے ہیں کیا. تو ابھی انہوں نے دیکھا کہ پرستھتی ابھی تو لکشمی چاہیے اور جانا ہے میرے کو, تو انہیں اس بار انہوں نے سوکار کر لیا کہ ٹھیک ہے اس بار جاتا ہوں, کیونکہ امریکہ جا کے یا پھر جہاں پاشچاتیہ دیش میں جا کے ڈبل سیلری ملتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ سیلری ملتا ہے, اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو ایسا موقع ہے. تو جانے کے لیے انہوں نے ایگری کر لیا. تو جب وہ گئے, جانے سے پہلے ہی ان کو پتا چلا کہ 1 مہینے پہلے ہی کمپنی کی پالیسی چینج ہو گئی ہے, کہ پہلے جو لوگ جاتے تھے 1-2 سال پہلے جو لوگ گئے ہیں, جو بھی امپلائی گئے ہیں, تو ان کو کچھ لکشمی ملے گا, تو بہت نہیں ملتا تھا, لائک 10-15 ہزار روپے یا 20 ہزار روپے 25 ہزار روپے مہینے کا جوڑ سکتے ہیں, اتنا ہوتا تھا ایکسٹرا سیلری جو انڈیا سیلری ہے اس کے علاوہ وہاں پہ اتنا ایکسٹرا جوڑ سکتے ہیں. لیکن ابھی پالیسی چینج ہو گئی ہے, ابھی جو جائیں گے ان کو لائک 70 ہزار روپے 80 ہزار روپے تک 1 مہینے میں جوڑ پائیں گے. تو اگر وہ پہلے جاتے تو ان کو کیا ملتا, کچھ بھی, ہارڈلی کچھ ملتا. لیکن ابھی وہ گئے اس بار تو بہت پیسہ جڑ گیا ان کا, اتنا پیسہ جڑ گیا کہ لگ بھگ 5 سال ابھی ان کو کم کام کرنا ہے, اتنا پیسہ جوڑ کے وہ آ گئے. تو بتا رہے تھے بھگوان پہ اس انسیڈنٹ کے بعد, اس پرستھتی کے بعد, سچویشن کے بعد ان کا بھگوان پہ اتنا شردھا بڑھ گیا, بالکل ناممکن جیسا چیز جو بالکل مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے, اچھا خاصا پیسہ جوڑ لیا ہے, ابھی ان کا جوائننگ بہت جلدی ہو جائے گا. ایسی ہمارے ایک اور بھکت ہیں جلگاؤں کے, ایک بھکت ہیں, ان کو پریاس کر رہے ہیں جاب ڈھونڈنے کا, پریاس کر رہے تھے, جلگاؤں میں جاب کرتے ہیں لیکن بامبے میں بھی پریاس کر رہے تھے جاب کرنے کا, ڈھونڈنے کا. تو ان کو ہم نے سمجھایا تھا کہ آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو لیکن یہ ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ ویسا نہیں دینے کا, جو آپ کا جاب لگا دے گا اس کے بعد ہوتا ہے, ایجنٹ کے تھرو جاب پریاس کر رہے تھے ڈھونڈنے کا. تو ایجنٹ کو پیسہ نہیں دینے کا, یہ سب چیٹنگ ہوتا ہے. ہم کو بہت سمجھایا تھا, بہت سمجھدار بھکت ہیں, بہت زیادہ قابل سمجھدار بھکت ہیں, بہت سمجھایا ان کو, لیکن پھر بھی کیا ہوا ان کے دماغ میں, کیا آیا, جاب ڈھونڈ رہے تھے انٹرنیٹ پہ, کسی ایجنٹ کی سائٹ پہ گئے, اس نے بڑی بڑی باتیں کری, یہ کرا, اس نے کہا یہ آپ لکشمی ٹرانسفر کرو, پھر آپ کو ایسا ہو جائے گا, آپ کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ 2-3 چیزیں بتائیں, اور تھوڑا تھوڑا کر کر کے بہت سارا پیسہ ان سے لے لیا. جب ان کو اور مانگنے لگا پیسہ, تب ان کو ہوش آیا, میں کر کیا رہا ہوں, میں کس کو پیسہ دے رہا ہوں, کہاں جا رہا ہے میرا پیسہ, کچھ ہوگا نہیں ہوگا. بہت زیادہ سمجھدار, بہت قابل بھکتے ہیں, بہت پرچار کرتے ہیں, بہت سمجھدار, میں نے اچھے سمجھدار بھکتوں میں آتے ہیں. تو ایسا سچویشن ہو گیا, پھر 1-2 گھنٹے بعد لوٹ کے آئے, تو جی ایسا ایسا ہو گیا, ایسا بتا رہے تھے. تو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے, میں نے ایسا کیسے کر دیا, مجھ سے ایسا کیسے ہو گیا. تو اگلے دن کہتے ہیں وہ آ کے, بھوجی میں بہت سمجھتا تھا کہ میں کتنا پرفیکٹ ہوں, کتنا نپن ہوں میں, اور آج بھگوان نے میرے کو ایسی پرستھتی میں ڈال دیا, میرے کو نمبر بنا دیا. تو کیسے انہوں نے بھگوان کا ہاتھ دیکھا, کہ بھگوان میرے کو بہت گھمنڈ ہو گیا تھا, میں بہت زیادہ اپنے کو پرفیکٹ سمجھتا تھا, بہت زیادہ میں اپنے کو ایکسپرٹ سمجھتا تھا, اور آج بھگوان نے میرے کو ہمبل کر دیا. تو یہ بھکت کا درشٹیکون ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھگوان کا ہاتھ دیکھنا, کیسے بھگوان جو بھی کچھ کر رہے ہیں میرے لیے انکول کر رہے ہیں, اس سے میرا ادھیاتمک پرگتی ہوگا, کچھ تو پرستھتی اچھا ہوگا, اس لیے بھگوان نے ایسا کیا ہے. ایسے کر کے اور بھکتوں کے سنگ میں رہ کے ہم یہ شردھا وکست کر سکتے ہیں, شردھا مان بھکتوں کے سنگ میں بہت مہتوپورن ہے. کنسسٹینٹلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم شردھا مان بھکتوں کے سنگ میں رہیں. ایک چھوٹی سی اسٹوری آتی ہے کہ ایک بہت بڑا کھمبا ہے, اس میں بہت سارے کیلے بنانا ٹانگ دیے ہیں, اور کچھ بندروں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ آپ بنانا کو, کیلوں کو پکڑو نکالو. تو کچھ 2 بندر گئے اس کو نکالنے کا, بہت پریاس کر رہے ہیں, کھمبے کے اوپر چڑھ رہے ہیں, ابھی وہ پول ہے نا چکنا ہے تو چڑھ نہیں پا رہے ہیں, بہت پریاس کر رہے ہیں اس کو چڑھنے کا, اور ہمیشہ فسل کے نیچے آ جاتے ہیں. بہت پریاس کر رہے ہیں, بہت پریاس کر رہے ہیں, 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پریاس کرتے رہے کرتے رہے, ہو ہی نہیں پا رہا ان سے, ہمیشہ چڑھ رہے ہیں لیکن فسل کے نیچے آ جاتے ہیں. تو پھر ہار مار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اکیلے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, مشکل ہے. تو پھر دوسرے سیٹ آف بندروں کو بھیجا گیا, وہ سائڈ میں آ گئے, اور دوسرے بندروں کو بھیجا گیا کہ آپ جاؤ اور اس کیلوں کو پکڑ کے لاؤ, اس بنانا کو لو توڑو. تو جب وہ بندر گئے پیاس کرنے کا, گئے اور پیاس کرنے کا اسٹارٹ کیا, تو وہ بندر کہتے ہیں, پرانے والے بندر کہتے ہیں مشکل ہے, نہیں ہو پائے گا. کیا کہتے ہیں؟ مشکل ہے, ناممکن ہے, مت پریاس کرو, بیکار ہے. اسی پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سب بھکت ہیں اور سب بھگوان کا بھکتی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں, لیکن الگ الگ بھکتوں کا الگ الگ استر ہے اور الگ الگ شردھا ہے نا. تو ہم بھکتی کرنے آئے ہیں یہاں پہ اور شاستر پڑھ رہے ہیں, پوپا جی ہمیں دیا ہوا ہے پروسیس. تو بہت سارے بھکت ہیں, سالوں سالوں سے رہ رہے ہیں بھکتی میں, لیکن وہ پریاس کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے پروسیس اچھے سے پالن نہیں کیا جو پوپا جی نے دیا ہے. تو ابھی وہ جو اتساہ ہے پریاس کرنے کا, اپنے ہردے کو شدھی کرن کرنا, بھگوت دھام جانے کا, وہ چھوڑ دیا ہے. تو اگر ہم بھی ایسے بھکتوں کا سنگ کریں گے تو پھر ہم بھی ویسے ہو جائیں گے, لائک وہ اتساہ نہیں رہے گا ہمارے اندر, انتوزیازم نہیں رہے گا کہ میرے کو بھگوت دھام جانا ہے, میں کیوں آیا ہوں مندر میں, میں کیوں ادھیاتمک جیون میں آیا ہوں, کیوں اس کون میں آیا ہوں, کہ میرے کو اس جنم مرتیو چکر سے باہر نکلنا ہے اور بھکتی کرنا ہے, شدھی کرن کرنا ہے, اس بار کرشن پریم پرام کرنا ہے. بہت جیون میں نے بہت ہی اچھائیں رکھی ہیں, بہت بہت اندر ترپت کیا ہے, یہ جیون بھگوان کرشن کو دینا ہے. اس جیون میں یہ پاپا جی کہتے ہیں نا, لاسٹ بزنس, وی شوڈ تھنک دس لائف از لاسٹ لائف, وی ہیو ٹو فنش اوور بزنس ان دس لائف ٹائم اونلی, ایسا کرنا ہے. لیکن اگر ہم تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ سنگ ہو ہمارا ان بھکتوں کا جن کو شردھا ہو, جو بہت تیورتا سے پریاس کر رہے ہیں اور نیموں کو پالن کر رہے ہیں. مارننگ پروگرام جیسے دیوکی نندن بابو جی کہتے ہیں بہت مہتوپورن ہے, مارننگ پروگرام, بھاگوتم کتھا میں آنا, ککشا میں آنا, دھیان روپک جم کرنا. آپ کسی بھی اسپرچل ماسٹر کو جائیے, فرسٹ تھنگ ہی ول ٹیل, چینٹ اٹینٹیولی, دھیان سے جب کریے, بیٹھ کے جب کریے, لائک انٹینٹیو چینٹنگ مت کریے. تو یہ پروسیس جو پوپا جی نے دیے ہیں بہت مہتوپورن ہیں, اس کو ہم پالن کریں گے تو ضرور ہم اس جیون میں سکسیس پراپت کر سکتے ہیں. اور اس کو پکڑنے کے لیے ہم کو شدھوان بھکتوں کا سنگ ملے چاہیے ہم کو. اور ہم سمے تھوڑا ہو گیا ہے ختم, تو کسی بھکت کو کوئی پرشن ہے یا ورش بھکتوں کو کوئی کمنٹ ہے تو بتا سکتے ہیں, کوئی پرشن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں, کوئی آپ کی جگہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے آشیرواد کا یاچنا کرتے ہیں. ہم نے بہت چیزیں بڑی بڑی بولی ہیں, ہم جو سنا ہے ہم نے ورش بھکتوں سے یا پڑھا ہے پوپا جی کے شاستروں میں وہ بولا ہے, تو آپ لوگ آشیرواد دیجئے کہ ہم بھی اس کو اپنے جیون میں اتار پائیں اور ایک اچھے بھکت, ایک فیتھ فل سرونٹ پوپا جی کے مشن میں رہیں اور سیوا کرتے ہیں جیون بھر. ہرے کرشنا. شیلا پرہوپاد کی, شریمد بھاگوتم کی.